संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान दिन विचरे हमारे। अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान के संदर्भ में पहले हम अपने चित्त को एकदम स्पष्ट कर लें तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान के दो दो भेद होने से, जो सुबह कहा था ना कि दो भेद होने से यह आत्मा अकारक कैसे सिद्ध हो जाएगा। वो कहते हैं द्रव्य प्रतिक्रमण भाव प्रतिक्रमण दो प्रकार का है, इसलिए आत्मा अकारक सिद्ध हो गया। ये बात कही थी ना सुबह, ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा था कि दोनों दो दो भेद होने से आत्मा अकारक कैसे सिद्ध हो गया। तो उस बात को अपन को समझने के लिए जयचंद जी छाबड़ा ने जो भावार्थ लिखा है उसको यदि अपन पढ़ेंगे तो बात बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगी। यह है आपकी छोटी किताब में दिया है अपन ने, है ना, मिल गया आपको। पहले तो ये बात अपन ध्यान में दें कि प्रतिक्रमण भूतकाल के दोषों संबंधी होता है और प्रत्याख्यान भविष्यकाल के दोषों संबंधी होता है, आलोचना वर्तमान के दोषों संबंधी होती है, लेकिन तीनों होते वर्तमान में है। जैसे वो तो भूतकाल की बात हो गई, ऐसा नहीं है। हमने जो अभी कहा कि भूतकाल में जो जो अपराध मेरे से हुए हैं मैं उनके लिए क्षमा याचना करता हूं, तो इसका नाम है ना प्रतिक्रमण। तो ये तो वर्तमान में हो रहा है ना, और भविष्य में जिन दोषों की होने की संभावना है मैं उनका प्रत्याख्यान करता हूं, तो ये संकल्प भी वर्तमान में हुआ ना। माने पहले तो हम ये दिमाग में स्थिर करें कि ये तीनों चीजें वर्तमान में हो रही हैं। किसके संबंध में हो रही हैं ये बात अलग है। हमने 2 साल पुराने अपराध के लिए क्षमा मांगी है कि 20 साल पुराने अपराध के लिए क्षमा मांगी है, इससे क्या फर्क है। वो क्षमा मांगने का काम तो अभी हो रहा है ना, तो उसमें 2 साल और 20 साल में बहुत फर्क है साहब, 18 बरस का, तो उसमें कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि वो काम तो अभी हो रहा है उस पर विचार कर रहे हैं। यदि हम अकारक सिद्ध होंगे तो भूतकाल के दोषों की क्षमा मांग लेने से हम भूतकाल में थोड़ी अकारक सिद्ध हो जाएंगे। अब अकारक बना तो आज हमारे ख्याल में आया है ना, तो इनने भगवान आत्मा अकारक है, पर एक ऐसा भेद दिया कि अकारक और साक्षात अकारक, ये आपके सुनने में नहीं आया होगा। ये अकारक है कि कारक है ये तो सुना है, लेकिन एक साक्षात अकारक, ये भावार्थ में बात आएगी। और वो ऐसा कहते हैं कि श्रद्धा के लेवल पर बात होना वो है अकारक, और उसे चारित्र के लेवल पर हमने कर लिया तो वो साक्षात अकारक हो गया। क्या हम किसी को शत्रु और मित्र नहीं मानते, कोई हमारा शत्रु और मित्र नहीं है, इस श्रद्धा के लेवल की बात हुई ना। अभी जो वर्तमान में जो हमसे शत्रुता रख रहे हैं कि हमारे चित्त में भी जिनके प्रति थोड़ा अरुचि का भाव है, समझे ना, वो तो अभी है ना, जब वो हट जाएगा तो हम उसे साक्षात प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कहेंगे। देखो हम क्या समझते हैं कि देश नहीं रखना चाहिए, कहते हमें सच में बिल्कुल देश नहीं है। तो हम देश की परिभाषा नहीं समझते हैं। इसमें हम थोड़ा श्रीमद का सहयोग लें तो उन्होंने लिखा है ना, देश अरोचक भाव, हमारे चित्त में उसके प्रति अरुचि होना, उसका नाम देश है। अब हम ये नहीं समझते हैं, क्योंकि श्रद्धा लेवल पे तो यही होगा ना, अरुचि। रुचि यदि श्रद्धा है तो अरुचि भी तो श्रद्धा का ही दोष होगा ना। हम उसे गालियां नहीं बक रहे, उसकी भलाई बुराई नहीं कर रहे, उसका भला बुरा नहीं कर रहे, उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहे, पहुंचाने का भाव भी नहीं कर रहे, तो हम समझते कि हमें द्वेष नहीं है। फिर भी हमारे उसके प्रति अरुचि है, वो हमसे बोलता है, दिखता है, तो हमको उसमें अरुचि हो जाती है। ठीक है, ठीक है, बहुत बात हो गई, चलो आगे बढ़ो। फिर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो ये जो है वो अंदर में द्वेष भाव है, द्वेष अरोचक भाव। हमने तो ये आत्मा के बारे में जैसी बात तो हमने नहीं की, आप क्यों कहते हो कि आपको आत्मा की अरुचि है? कहते हैं जब भी आत्मा की चर्चा होती है और वो आधा घंटा तक लगातार चलती रहे तो आपको आलस आने लगता है, जमाई होने आने लगती है। तो यही तो अरुचि है, और क्या होना है, और क्या होना है अरुचि, समझे ना। इसी का नाम देश है। यदि हमारी पर्याय की प्रशंसा हो रही हो और धंधे पानी की बात हो रही हो, ये जमीन मिल रही है, बहुत सस्ती है, एकदम साल भर में दूने भाव हो जाएंगे, तो उसके बीच में आपको नींद आती है ना? उसके बीच में जमाई जमाई समझते हैं, तो जमाई आती है कभी नहीं आती है। और आत्मा की चर्चा के बीच में आने लगती है ना जमाई। तो ये इस बात आपके थकान का परिणाम भी हो सकता है, लेकिन असली तो इसमें अरुचि का भाव है। थकान होने पर भी उस काम में तो ऐसा नहीं होता है, और वो कहेगा भी आप चलो आप देख लो अभी, हाँ चलते हैं, लेकिन अभी आप थके हो, अभी आराम कर लो, फिर कल देख लेंगे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई थके नहीं, चलो चलो। होता कि नहीं होता? जो चीज हमें रुचिकर लगती है उसमें हम थकान की उपेक्षा करते हैं, है ना। ये मैंने थोड़ा आइडिया आपको दिया है, अब अपन पढ़ते हैं तो आपके ख्याल में वो बात आएगी। अपन को क्या समझना है पहले आप उद्देश्य बना लो, अपना साध्य क्या है, सिद्ध क्या करना है, न्याय की भाषा में ये सिद्ध करना है कि हम दो प्रकार का प्रतिक्रमण और दो प्रकार का प्रत्याख्यान हमारी समझ में आएगा तो हमारा आत्मा अकारक हो जाएगा। ये सिद्ध करना है। तो प्रॉब्लम यही खड़ी की थी ना सुबह, हमेशा किसी भी चीज की अध्ययन करने का, उसी गहराई तक पहुंचने का एक तरीका है। तो हमारी प्रॉब्लम ये खड़ी हुई है, दो प्रकार का अप्रतिक्रमण है और दो प्रकार का अप्रत्याख्यान है, और यदि ये बात हमारी समझ में आ जाए तो आत्मा अकारक सिद्ध हो जाएगा, है ना। हम कहते इससे आत्मा के अकारक सिद्ध होने का है? क्या है, क्या प्रयोजन है? हम ऐसा प्रश्न करें कि यहां से एक फ्लाइट मुंबई के लिए चलती है और वे डेढ़ घंटे में वहां पहुंच जाती है, तो बताओ कि मेरी उम्र क्या होगी? आप कहेंगे कैसी पागलपन की बात करते हो, उस फ्लाइट के यहां से वहां तक पहुंचने में डेढ़ घंटा लगता है या दो घंटा लगते हैं, इससे आपकी उम्र का क्या संबंध है ना? ऐसा ही होता है या नहीं होता? ऐसे प्रश्न है कि प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण दो तरह का सिद्ध हो गया, तो आत्मा आकारक सिद्ध हो गया, कैसे सिद्ध हो गया? अब वो बात अपन, ये प्रश्न है, प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण वर्तमान में होते हैं, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान, ये दो बातें स्पष्ट हो गई। अब अपन पढ़ते हैं तो इसमें से वो बात निकलनी चाहिए। जयचंद जी छाबड़ा ने जितना संभव हो सकता है लिखने में वो सब कुछ लिख दिया है, इससे ज्यादा कुछ लिखा नहीं जा सकता है, और इसीलिए मैंने उनको कोट कर दिया है। क्या धैर्य से पढ़ना, काफी लंबा है। अतीत काल में जिन परद्रव्यों को ग्रहण किया था उन्हें वर्तमान में अच्छा समझना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, वह द्रव्य अप्रतिक्रमण है। और उन परद्रव्यों के निमित्त से जो रागादि भाव हुए थे उन्हें वर्तमान में अच्छा जानना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, ये भाव अप्रतिक्रमण है। ये द्रव्य भाव अप्रतिक्रमण की उन्होंने परिभाषा की है, जो अपन ने सुबह पढ़ी थी, और उसमें से कुछ थोड़े आगे बढ़े हैं ना। क्या अंतर आया है? एक तो वो उन्हें वर्तमान में सिद्ध किया, वो बातें हुई थी भूतकाल में है? और एक वर्तमान में, यदि पहले हमसे 2 साल पहले किसी ने हमें गाली दी थी और हमने एक टांटा उसे जड़ दिया था, तो अभी 2 बातें हुई थी, गाली का सुनना और टांटे का जड़ना एक बात है ना, और टांटे गाली को सुनकर क्रोध आना और टांटा जड़ने का भाव आना ये दूसरी बात, एक हो गया द्रव्य, एक हो गया भाव है ना। अब वो तो उस वक्त हुआ था, अब हम अभी विचार कर रहे हैं कि वो ठीक हुआ था कि नहीं, होना चाहिए। अपन तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, हम तुम जैसे नहीं हैं, हम कायर नहीं हैं, हमारे सामने कोई बोल के देखे तो एक दफे जड़ दो ना, तो हमेशा के लिए निबट जाते हैं, फिर तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। क्या एक दफे कोई पत्थर फेंके ना अपनी तरफ, तो भले ही वो बगल से निकल जाए, अपन को गोली नहीं लगे, तो अभी अपन को गोली से उसे उड़ा देना चाहिए, एक आदमी को मार डालना चाहिए, बस एक ही गोल, फिर आपको किसी को मारना नहीं पड़ेगा, फिर किसी की हिम्मत, पत्थर मारना तो बहुत दूर, जब हमारा भाषण हो रहा होगा ना तो इधर खुदाई छूटेगी ना, तो ऐसा हाथ करने का विकल्प नहीं आएगा, क्योंकि हमने हाथ किया और सामने वाले को लग गया कि ये पत्थर मार रहा है तो वो हमें गोली मार देगा, वो हमारे हाथ में पत्थर नहीं होगा तो भी क्यों सब लोग ऐसे नीचे हाथ बांध के बैठेंगे, ऐसे सिद्धांत वाले लोग इस जगत में आपको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? एक दफा कर देना चाहिए। तो ये जो वर्तमान में वो जो हुआ था पहले वो मैंने बढ़िया किया था, ऐसे ही करना चाहिए। रही मन कड़ुए मुखन को सहियत यही सजा है, सुना कभी? एक लाइन मैंने बोली, दूसरी बोल के बताओ। खीरा का मुंह काट के मलियत नमक लगाए, अर्थ समझ में ना, खीरा समझ दो ककड़ी, और उसके हम मुंह काटते हैं और दोनों में नमक लगा के ऐसे ऐसे घिसते हैं ना, और फिर उसे और काट के जो फसू कर आता है फिर काट के फेंक देते हैं, फिर कीड़ा सना ये खाते हैं, तो वो कहते हैं वो कड़वापन होता है उतने हिस्से में होता है और बाकी आगे के हिस्से में भी होता है, तो नमक लगा के घिस देने से वो खिंच आता है और वो फंसू कर आया ना उसमें वो कड़वापन आ जाता है, अफरापन उसे निकाल के फेंक देते हैं तो बाकी का कीड़ा कड़वा नहीं होता है। माने खीरा के कड़वापन को मिटाने की ये विधि थी जो हमारे बाप दादे नियम से करते आ रहे थे। अभी अपन लोग आलसी हो गए हैं और अपन ने तो कभी काट के खाया ही नहीं, कटा कटा मिलता है तो पता नहीं कि आज भी होता है कि नहीं होता है। होता होगा क्यों साहबरा जी, होता है आपको तो होगा पता। अब मैं बोलता हूं छंद, खीरा का मुंह काट के मलियत नमक लगाए और रहीमन कड़वे मुखन को चहियत यही सजाए। जिनका मुख कड़वा है उनको ऐसी ही सजा देनी चाहिए। माने जो मुंह से कड़वा बोले उनको थोड़ा सा मुंह काट के नमस्ते लगाना चाहिए। समझ में आएगा। अब ये अप्रतिक्रमण हुआ, इसमें अप्रतिक्रमण क्यों हुआ कि वो खीरा का मुंह जब काटा होगा तब काटा होगा, और किसी ने काटा होगा, जिसने काटा होगा उसने काटा होगा। क्यों? आज की बात नहीं, 10 साल पहले काटा होगा, लेकिन तू तो आज भी ये मान रहा है ना कि खीरा मुख अकेले खीरा का नहीं, खीरा जैसे मुख जिनके हों उन सभी का मुख को काट कर उसमें नमक में झुरक करके ऐसा करना चाहिए। पहले के राजा लोग किसी को फांसी चौराहे पर देते थे, आजकल तो अंदर में देने लग गए और कोई देखे नहीं, क्योंकि सब लोग देख लें कि जिसने मेरा विरोध किया उसे ऐसा फांसी पर चढ़ना पड़ेगा तो दूसरे आदमी की जबान नहीं खुले, है ना। तो ये क्या हो गया, द्रव्य और भाव दोनों अप्रतिक्रमण। समझ गया। वर्तमान में अभी ऐसा मान रहा है ना कि जो गाली दे उसे एक टांटा झड़ना चाहिए। तो एक की तीन सुनाता हूं मैं, थोड़ा ये दूसरे नंबर का है, वो चांटा नहीं झड़ता है लेकिन एक की तीन सुनाता है। क्या है? अब कोई मां बहन की गालियां बक रहा है तो तीसरा कहता है तो प्रेम से समझाता है, देखो भाई साहब ऐसा थोड़ी है कि गालियां देना मुझे नहीं आता है, ये भी समय सार की गाथा थोड़ी है कि जिसका अर्थ मुझे समझने में दिक्कत होगी और कुछ सीखना पड़ेगी। तो गालियां मुझे बहुत अच्छी तरह से आती हैं और मैं भी दे सकता हूं, लेकिन मैं नहीं देता हूं, समझ लो। ये तीसरे नंबर का है। क्यों? गालियां देने में के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है, बहुत बहुत बड़ी कोई डिग्री हासिल नहीं करनी पड़ती है। तुमने जो बका है ऐसा मैं भी बक सकता हूं, है? और फिर इसके आगे बोलो वीरेंद्र, अरे भैया जिस कुएं का पानी तुम पीते हो उसी का हम पीते हैं, ये क्यों भूल जाते हो? इसका क्या अर्थ है? क्यों क्यों रमेश, ये कुएं के पानी से क्या लेना देना हो गया? क्यों? जिस मिट्टी में तुम पैदा हुए हो उसी मिट्टी में हम भी पैदा हुए हैं। मेरे कहने का मतलब कि तुम ज्यादा माथा खराब मत करो, हम भी तो उसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, उसी कुएं का पानी पीते हैं, और गालियां देना हमें भी बहुत अच्छी तरह आता है। मतलब ये है कि हम जैसे को तैसा भी जवाब दे सकते हैं, है? ये भी जवाब है कि नहीं? क्यों? ये तीसरे प्रकार का है। ये तीन प्रकार के अप्रतिक्रमण हो गए हैं, समझ में? अप्रतिक्रमण कि नहीं, नहीं जो हुआ था वो एकदम गलत हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसका मुझे बहुत दुख है, ये हो गया प्रतिक्रमण। समझ गया? कब हुआ ये प्रतिक्रमण? भूतकाल में कि वर्तमान में? अरे वर्तमान में हुआ, भूतकाल के बारे में हुआ। तो प्रतिक्रमण वर्तमान में होता है लेकिन भूतकाल के बारे में होता है। समझ गया? देखो, अतीत काल में जिन प्रद्रव्यों का ग्रहण किया था उन्हें वर्तमान में अच्छा समझना। अब आ गया समझ? मैंने कितने उदाहरण देके समझा दिया। उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रखना, ये मेरा था। यह द्रव्य अप्रतिक्रमण है। वो गालियां मालियां जो दी थी ना उन्हें अच्छा समझना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रखना, ये द्रव्य अप्रतिक्रमण है। और उन परद्रव्यों के निमित्त से जो रागादि भाव हुए थे उन्हें वर्तमान में अच्छा जानना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, ये भाव अप्रतिक्रमण है। देखो चार पंक्तियों में कितना अच्छा समझाया है। ये वर्तमान का दोष है, भूतकाल के बारे में ये भी स्पष्ट हो गया, और द्रव्य और भाव का प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण भी स्पष्ट हो गया। अब इसमें से वो अकर्ता कैसे सिद्ध होगा वो अपना भी धैर्य रखें, इसी में से ही निकलेगा। मैं पहले नहीं निकालना चाहता हूं, पढ़ के ही निकालना चाहता हूं। समझ रहे ना? देखो इसी प्रकार आगामी काल संबंधी पर द्रव्यों की इच्छा रखना, ममत्व रखना, ये द्रव्य अप्रत्याख्यान है। और उन परद्रव्यों के निमित्त से आगामी काल में होने वाले रागादि भावों की इच्छा रखना, ममत्व रखना, ये भाव अप्रत्याख्यान है। कि अब भी मेरे को मौका लगेगा तो मैंने जैसे पहले किया था वैसा ही करूंगा, उन्नीसा नहीं करूंगा। ये मैं समझ लेना कि मैं बदल गया हूं, धोखे में मत रहना। क्या मैं कितना ही ठंडा हो गया हूं लेकिन मत समझना तुम, अपनी जबान पर काबू रखना, मेरे से ऐसी आशा मत रखना मैं संत नहीं हूं। क्यों? क्यों संत हो जाते तो बहुत बुरा हो जाता। कहना तो ये चाहिए था कि वो बात भूल जाओ, अब तुम चाहे जो कुछ कर सकते हो मैं तुमको वैसा जवाब नहीं दूंगा। क्यों? ये हो जाता भाव प्रत्याख्यान। क्योंकि अब मेरे में ऐसा भाव ही पैदा नहीं होगा। तो चार लाइन और तीन लाइन में उन्हें प्रतिक्रमण को समझाया था, चार लाइनों में अप्रतिक्रमण, और उन्होंने अप्रत्याख्यान को समझा दिया तीन लाइनों में, क्योंकि वो सरल हो गया था ना ऊपर से। ये बस भूतकाल के संबंध में था, ये भविष्य काल के संबंध में है, लेकिन है वर्तमान में। इस प्रकार द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण, और द्रव्य अप्रत्याख्यान और भाव अप्रत्याख्यान, ऐसा जो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान का दो प्रकार का उपदेश है वह द्रव्य भाव के निमित्त नैमित्तिक भाव को बतलाता है। ये है, ये मैंने बात शुरू किया कि द्रव्य अप्रतिक्रमण से भाव अप्रतिक्रमण और उससे वजह माने एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। माने वो जो मैंने गाली दी थी वो मेरे को ऐसा द्वेष आया था इसलिए दी थी, और गाली फिर द्वेष का कारण बन गई। द्रव्य से भाव और भाव से द्रव्य माने उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध उनका ही आपस में है। तो मेरा तो नहीं रहा ना, कि मेरा उसमें कुछ काम नहीं है। किसका? बबलू। तो आत्मा कारक सिद्ध हो गया ना। समझ रहे हैं ना? जैसे उसने कहा था ना कि वह हाथी खरीदने वाला तो गया। आया समझ में कि नहीं? कि समझाना पड़ेगा, ऐसे जो इस साल भर्ती हुए उन्हें समझाना पड़ेगा है। तुझे याद है तो सबको याद है कि नए नए बच्चे आए हैं अभी तो। एक राजा साहब की सवारी निकल रही थी एक शराबी खड़ा था दूर तो एकदम चिल्ला के बोला कि ए हाथी वाले हाथी बेचेगा फटाफट दौड़ के पुलिस वाले गए तो उनने पकड़ लिया जेल में बंद कर दिया। बस सुबह दरबार में जब लगा ना दरबार तब उसे पेश किया गया। राजा ने पूछा हे भाई हाथी खरीदने वाले हाथी खरीदोगे? मेरे हुजूर मैं कौन होता हूं हाथी खरीदने वाला? हाथी खरीदने वाला तो गया, मैंने वो जो नशा था ना वो तो उसने वे बात की थी आपसे, अब वो नशा ही गायब हो गया ये समझ में आया क्या? देखो अब इनने सुना होता पहले तो हंसते क्यों इतने अरे अकेला नशा शराब का ही नहीं होता है, नशा अकेला शराब का ही नहीं होता है। आपके पास करोड़ों रुपया आप लोगों तिजोरी में नगद पड़े हैं बैंक में पड़े हैं क्यों? हमारे पास जमीन की बोली लग रही है तो आप बोलते हाँ 1,05,00,000 क्यों बोलते हैं ना क्यों धड़ा 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 और बोली याद कैंसिल हो गई कल होगी आगे बोली। तो जो वहां पर बदमाश लोग थे ना वो आए रात को और छाती में बंदूक रख के उन्होंने निकाल 1,05,00,000 निकाल क्या और वो छीन ले गए। और सुबह बोले बोलो सेठ जी बोलो क्या क्या बोले तो बोलने वाला तो गया समझ गया ना वो जो बोल रहा था वो कौन बोल रहा था? वो तिजोरी में पड़े हुए नोट बोल रहे थे। अब दो बातें ध्यान में आ गई कि एक तो वे नोट नहीं रहे और दूसरी बात ये कि इधर जो है मैं बोली बोलता हूं तो जो लोग बैठे हैं बदमाश उन्हें पता चल जाता है कि मेरे पास है नगद, क्योंकि उसमें कहते 25% तो तत्काल जमा कराने पड़ेंगे क्यों? तो वे आके घर पे आ जाते हैं तो एक तो अब है नहीं तो बोलेंगे क्या वो होए तो यहां बोलना अच्छा नहीं है क्यों समझ में आ गया ना। और अब से भी लोग पहले बोरी बोलते थे ना ठाट से तो नाम भी होता था, ऐसा नहीं कि उन्हें नाम नहीं चाहिए बहुत त्यागी हो गए हैं। अब बंद कमरे में बोलियां होती हैं क्यों दिलीप भाई क्यों? क्या वहां इनकम टैक्स वाले बैठे रहते हैं सेल टैक्स वाले बैठे रहते हैं और डाकू बैठे रहते हैं आतंकवादी बैठे रहते हैं आप समझे ना? नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए ना मुझे नहीं चाहिए नाम नहीं चाहिए नाम मतलब मेरा नाम कहीं मतलब मुझे कोई बताना नहीं घोषणा नहीं करना मेरी हमको लगता है नहीं नहीं तो ये तो सीधे चौथे काल से चले आ रहे हैं। अब समझ में आ रहा है दिव्य प्रतिक्रमण भाव प्रतिक्रमण उसकी श्रद्धा में से वो बात निकल गई कौन सी कि जो पहले एक ऐसी गलती हुई थी वो गलती नहीं। वो कहते हैं वो गलती जो थी ना वो द्रव्य का भाव भाव का द्रव्य में निमित्त नैमित्तिक संबंध था तो गलती किसने की थी? उस राग ने गलती की थी देश ने समझे ना आपने राग देश ने गलती किसने की थी? उस राग ने। और वो जो क्रिया हुई थी अथवा वो कर्म का उदय था उसके निमित्त से वो राग ऐसा हुआ था तो उसका कर्ता कर्म निमित्त निमित्तिक भाव से उन दोनों में हो गया और वे दोनों वर्तमान पर्याय हैं। इसलिए कहते निमित्त निमित्तिक संबंध वर्तमान पर्याय का वर्तमान पर्याय में होता है نمت نمت کی کتاب کلاس پڑھائی ہوگی دادا نے؟ اس سال تو نہیں پڑھائی، پہلے پڑھائی نا بہت. وہ تیرے آتما کے ساتھ نہیں ہے اس کا سمبندھ. تو کارک نمت نمت کے بھاؤ سے کون ہوا؟ درو کا بھاؤ اور بھاؤ کا درو. درو کرم کی وجہ سے بھاو کرم اور بھاو کرم کی وجہ سے درو کرم ہے نا. تو کہتے ہیں بھگوان آتما پھر کارک رہ گیا. ابھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا کہ تو نے کہاں کیا؟ وہ تو برتمان کا جو راگ دیش ہے اس نے کیا، اور کرم کا ادے ہے اس نے کیا. سمجھے نا. تو وہ آتما اکارک کیسے اسدھ ہو گیا؟ وہ کھڑا رہ گیا نا. تو ایک کیسے ہوا چھابڑا جی، ایک کمال ہوا کیسے؟ ایک کمال ایسے ہوا کہ ہم نے وہ جڑ کی کریا جو درو کرم، اور جو بھاو کرم مانے راگ کی کریا، مانے آشرب تتو اور عجیب تتو، ان سے بھن اپنے آتما کو جانا، اس سے ایک کمال ہوا. آتما کارک سدھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ کارک کرتا کا سمبندھ ہے. تو درو سے بھاو کا اور بھاو سے درو کا رہا. کرودھ کرم کے وجہ سے گسا آیا، اور گسا سے آیا کرودھ کرم بنا. وہ ان کا جو کچھ بھی ہوا وہ اس کرم کا کرم میں چلا گیا. اب ہم کہتے ہیں ہم تم سے کہیں گے کہ ایسی غلطی اب بھوش میں کبھی نہیں کروں گا، اس کا دو ارتھ ہے نا، کہ ایسا راگ دیش بھی بھوش میں نہیں کروں گا، اور ایسی کریا بھی میرے سے نہیں ہوگی. وہ تو راگ دیش سے ہوتی تھی نا. تو کریا تو پردرو کی کریا ہے، تو پردرو کی کریا میں کیا کرنے والا ہوں؟ جب میں کر نہیں سکتا تو میں روک بھی نہیں سکتا. کیوں؟ ایسا نہیں ہوتا بیٹا. چانٹا جو ہوا ہے نا، وہ چانٹا مارنے کا بھاو اندر ہوا ہے، اور وہ اس کا نمت ہے. اس کا نمت ہے جو چانٹا پڑا نا، وہ بھاو کا، سمجھے نا. تو اس کے ساتھ نمت نمت ایک سمبندھ ہے. اب میں نے اس چانٹے والے ہاتھ سے تو سمبندھ توڑا ہی، اس مارنے کے بھاو روپی راگ سے بھی میں نے سمبندھ توڑا. اب یہ میرا نہیں ہے. کیوں؟ جیسے سڑک پہ کسی کی لیٹرین پڑی ہے نا، کہتے ہو کس نے انہوں نے گندگی کری ہے؟ کہتا میں نے نہیں کی. کہ میں نے ایک بچے کو یہاں کرتے ہوئے دیکھا. کہ بچہ تھا میرا نہیں. کیا کرتے کہ نہیں کرتے؟ کہ نہیں نہیں وہ تمہارے چھاتراواس کا ہے. سمجھے کہ ہمارے چھاتراواس کا بھی نہیں ہے. کیوں؟ وہ بھی چھاتراواس کا ہوئے تو ہم کہیں ہمارا چھاتراواس ہی نہیں ہے. کیوں؟ میں نے کہیں سے ہمارا کنیکشن اس سے ٹوٹنا چاہیے نا، تب تو ہم اس کے آکارک سدھ ہوں گے نا. تو اپن تو چلاتے آئے ہیں. کیا چلاتے آئے ہیں؟ آتما اور راگ میں جب تک یہ جیو بھید کو نہیں جانتا ہے تب تک اجانی رہتا ہے نا. جاگرنا بیدی وشیشم ترنتو آداسوان دونم پی انانی تابج سو کو آد سے بٹھ دے جیو ہے نا. یہ جو تم کو یاد ہے نا، تھوڑی بہت انا جی کی بھی کرپا ہے اور تھوڑی بہت میری بھی ہے. کیونکہ میں یہ پاٹھ کراتا ہوں نا شروع میں، اب تم سے 15 دن تک لگاتار پاٹھ کرا رہا. پہلی گاتھا سے چلتا ہے نا، صبح 10 منٹ پہلی گاتھا سے کرتے ہو، کتنے منٹ تک؟ تو 24ویں گاتھا تک. یہ میرا نہیں ہے، میں اس کا نہیں ہوں، یہ میرا نہیں تھا، میں اس کا نہیں تھا، وہاں تک کرتے ہو نا. میرے خیال سے وہ 24ویں گاتھا تک ہے. اب اتنے دنوں تک جو 24 گاتھاؤں پہ پرچن آئیں گے، اتنے دنوں تک لگاتار بولو گے اور آ جاؤ گے تو یاد ہو ہی جائے گا نا. اور بھلے یاد کیا ہوگا تم نے تو یہ بولو گے تو یاد رہے گا، سمجھے نا. نہیں بولو گے تو یاد نہیں رہے گا، بھول جاؤ گے. تو درو پرتکرمن کا بھاو پرتکرمن، بھاو پرتکرمن کا درو پرنس کے نمت نمت ایک سمبندھ ہے. تو ہم نے دو دو بھید کر دیے نا درو پرتکرمن کے، تو ان کا پرسپر میں وہ نمت نمت ایک سمبندھ ہو گیا. تو نمت نمت ایک بھاو سے کرتا کرم سمبندھ ہو گیا. تو جو پھر بھگوان آتما ہے وہ اکارک سدھ ہو گیا. अब अकारक सिद्ध कैसे होता है वो ख्याल में आया। यानी इसको जयचंद जी सावरा ने कितनी सुंदर भाषा दी, आ गए आप भाषा इधर नहीं दे रहे हो, अरे हमको बनानी पड़ती है ना वो, तो उसमें कितना पसीना छूटता है वो हमें पता है ना, तो किसी ने बनाई होगी तो उसने भी कितना उसमें सोच समझ के बनाई होगी ना, वो हमारी समझ में आता है ना। ठीक है, विद्वज्जन विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम, बंध्या किम विजानाति महती प्रसव वेदना। आ गया अर्थ समझ में, एक विद्वान के परिश्रम को एक विद्वान ही जान सकता है। क्यों हो अर्ध निशा का सन्नाता, एक वो और है ना, अथवा निष्कंटक शिव मग में विषकंटक बोता हो, है ना, हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में बनचारी चरते हो, क्या अर्थ है समझे ना। हाँ, जब जग विषयों में रचपच कर निद्रा में सोता हो, इस सबका चित्रण है, रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का चित्रण है। क्या कि सारा जब जग विषयों में रचपच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, ये क्या अर्थ है इसका। दिलीप भाई कभी सोचा, सोचने की क्या जरूरत है, पढ़ने से ही धर्म हो जाता है। कि सारी दुनिया जब विषयों में पहले रची, कहते हैं ये क्लब होते हैं उसमें जाकर खूब नहाते हैं, शराब पीते हैं, नाचते हैं, है ना, और कितनी रची कि पच गई, थक्के चकना चूर हो गई, समझे ना। जब जगे विषयों में रच पच, इसमें बहुत दम है, पहले तो रचा खूब, इतना रचा कि थक्के चकना चूर हो गया, पसीना पसीना हो गया, तो शराब भी पी ली थी, थक भी गया था, तो बिल्कुल बेहोश जाकर के पड़ गया, गाफिल हो गया और सो गया। जब जग विषयों में रचपच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अब समझ लो ये सब बंबई में डांस बार वांस बार चलते हैं, इनके बारे में अपन सुनते रहते हैं कभी कभी, कोई महाभाग्यशाली होगा जिसने देखे भी होंगे, क्यों और उसमें कैसे रचे, अब कोई किसी तरीके से, आखिर 5 इंद्रिय के विषयों में ही तो रचते बचते हैं ना, माने कितने रचे 5 इंद्रियों के विषयों में कि थक्के चकना चूर हो गए उस सीमा तक। जब जग विषयों में रचपच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा शिव के निष्कंटक मग में विषकंटक बोता हो, कि नहीं आया हो तो प्लानिंग कर रहा हो, कल डांका कैसे डालना, इनकम टैक्स की चोरी कैसे करना, सेल्स टैक्स बचाना कैसे, ये मोक्ष का मार्ग तो बिल्कुल निष्कंटक है, कोई कांटे माटे उसमें है ही नहीं, लेकिन वो जो जगड़े है ना, जो आधे तो सो गए, और जो जग रहे वे भी कोई आत्मा का विचार नहीं कर रहे, वे ऐसी ऐसी प्लानिंग कर रहे, ऐसी योजना बना रहे, उसको मजा कैसे चखाना, उसको कैसे करना, क्यों वो कौन है सब, अथवा वह शिव के निष्कंटक मग, रास्ता तो बिल्कुल कांटों से रहे थे, बिल्कुल एक कांटा नहीं है उसमें, लेकिन वो विष से बुझे हुए कांटे समझते हो, क्योंकि ऐसा लगेगा तो क्या होगा, थोड़ा फिर ठीक हो जाएगा, और विष से बुझा होगा तो मर जाएगा आदमी, ये काम करता है। निष्कंटक मग में विष्कंटक बताओ, तब सौंत निराकुल मानस तुम हैं? ये दिनवाणी का भावार्थ लिखते हो क्या? तब जयचंदी छाबड़ा क्या करते थे? ये भावार्थ लिखा था, समझ गए? ये कुंद कुंद ने ये लिखा था, अमय चंद्र ने ये लिखा था। ये साहित्य की साधना भी ऐसे ही होती है इससे, है ना? वो अपन ने एक छंद बोला था, याद है क्या? विद्वज्जन बिजानाती विद्वज्जन परिश्रमम और बंध्या किम बिजानाती महती प्रसव वेदना। जो बांझ औरत है जिसने कभी बच्चे को पैदा नहीं किया, उसे कैसा पता चलेगा कि बच्चा पैदा करने में कितनी तकलीफ होती है, है ना? पढ़ो। इसी प्रकार आगामी काल संबंधी परद्रव्यों की इच्छा रखना, ममत्व रखना द्रव्य अप्रत्याख्यान है, और उन परद्रव्यों के निमित्त से आगामी काल में होने वाले रागादि भावों की इच्छा रखना, ममत्व रखना भाव अप्रत्याख्यान है। इस प्रकार द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण, द्रव्य अप्रत्याख्यान और भाव अप्रत्याख्यान, ऐसा जो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान का दो प्रकार का उपदेश है, वह द्रव्य भाव के निमित्त निमित्तक भाव को बतलाता है। वे एक दूसरे के निमित्त निमित्तक संबंध है, उनमें ये बात बताते हैं दो भेद। इससे यह सिद्ध हुआ कि पर द्रव्य तो निमित्त है और रागादिक भाव निमित्तक है। इस प्रकार आत्मा रागादि भावों को स्वयमेव न करने से रागादि भावों का अकर्ता ही है, ऐसा सिद्ध हुआ। वो अकारक सिद्ध करना था ना, क्यों? बहुत बढ़िया लिखा उन्होंने। अभी मेरे जैसे के समझाए बिना आपकी समझ में आ जाए तो बढ़िया लिखा, क्यों नहीं? तो और बढ़िया लिखने की जरूरत है इसमें, तो और समझाने की जरूरत है। अब आपने समझ लिया तो बहुत भाग्य की बात है, और फिर आप इसे समझा भी लें तो और महाभाग्य की बात है। नहीं समझा पाए तो अभी आपका काम तो चलेगा, क्यों? ठीक है क्या? नहीं अकर्तापन लगा, कुछ अकर्तापन लगा आपको? इस प्रकार यद्यपि यह आत्मा रागादि भावों का अकर्ता ही है, तथापि, अब देखो आगे, अब साक्षात अकर्ता कर रहे हैं, अकर्ता तो हो गया, अब साक्षात अकर्ता की बात चल रही है। जब तक उसके निमित्त भूत परद्रव्य के अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान हैं, तब तक उसके रागादि भावों का अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान है, और जब तक रागादि भावों का अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान है तब तक वह रागादि भावों का कर्ता ही है। जब वह निमित्तभूत परद्रव्य का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है तब उसके निमित्त रागादि भावों का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान हो जाता है, और जब रागादि भावों का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो जाता है तब वह साक्षात अकर्ता ही है। अब आगे बढ़े, साक्षात अकर्ता है। अभी पहले तो नक्की हो गया सिद्धांतता, श्रद्धा के लिए, सिद्धांतता माने श्रद्धा के लेवल पर। अब फिर वो इस प्रकार का बराबर निरंतर चिंतमन करता है, जो निर्णय किया उसको। चिंतमन दो तरह का होता है, एक तत्व निर्णय करने के लिए और एक निर्णीत तत्व की रुचि के कारण बार बार दिमाग में वो विकल्प चलते हैं। फिर समझ सुनना, अपने तीसरा कहते हुए क्या तत्व चर्चा करते रहते होंगे सर्वासिद्धि के, हमें सारे संबंध सीधे हुए पहले ही से है, तो जिन्हें सम्य दर्शन नहीं है उन्हें तत्व का निर्णय करने के लिए चिंतमन करना है। और जब उस तत्व का निर्णय हो जाता है तो वो इसे इतना अच्छा लगता है कि फिर उसके बिना प्रयत्न के ही तत्व चिंतमन चलने लगता है। समझ रहे हैं ना? वही जब अंदर चिंतमन के चलेगा तो वाणी में भी वही आएगा, दिन रात आत्मा का चिंतन और मृदु संभाषण में वही कथन, और निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर में, जो दिमाग में जिसके चलता रहता है ना, वो अपनी वो ही बात है बोलने में करता है। तो इस तरह से वो साक्षात वो हो जाएगा अकर्ता। तो ये साक्षात अकर्ता की बात है। देखो अपना तो वो रागादि भाव से संबंध था, तो वो अभी जैसे भी वही उदाहरण पकड़े ना अपने पास, कि अपने पास 5 करोड़ रुपया है, तो 5 करोड़ रुपया है तो इन्हें क्या करना है, इनका क्या करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना इससे 5 के 10 हो जाए और कहीं जहां लगा दें, और ऐसा ना कि 5 करोड़ ही गायब हो जाए। चलता है ना सर, हम कह भैया हमारे पास एक तरह 5 करोड़ हो जाए ना, क्यों चाचा जी, तो फिर बस फिर हम निश्चिंत हैं, फिर हम तुम्हारा आत्मा फात्मा दादा तुम्हारे संगे हो जाएंगे हम। फिर बेटा ये सोचोगे कि क्या करें, इसे कहाँ इन्वेस्ट करूं, शेयर ले लूं, इसमें लगा दूं, क्या क्या होता है, बैंक में जमा करा देते हैं, उन्हें तक क्या करते हैं, वो क्या कर लेते हैं, एफडी में एफडी तो होती है, वो कोई भी और चीजें आई हैं वो खरीद बाजार से वो खरीद लेते हैं, बोन वोन भी नहीं और नए नए क्या कंपनी वो आती है जिसमें खतरा ज्यादा होता है, थोड़ा कम होता है तो ज्यादा पैसा आ जाता है, भूल गए नाम, तुम भी मेरे जैसे ही लगते हो। हाँ वो शेयर क्या बोलते हैं वो क्या कर लेते हैं, जो भी समझ लो, तो फिर तुम बेटा इसमें लग जाओगे, फुर्सत नहीं मिलने वाली है, ये सब वो तो 8 घंटा सोच के कर लेंगे, फिर नहीं तुम 8 घंटा में कर लोगे, लेकिन दिमाग में 24 घंटा चलेगा उसकी स्टडी, अखबार खोलोगे तो फटाफट हो म्यूचुअल फंड क्यों होता है, क्या क्या अपने को तो शब्द ही याद नहीं रहते हैं, क्या होता है फिर उसमें लग जाओगे धुन में। अब ये धुन कैसे खत्म हो, क्यों देखो बहुत मार्मिक बात है, ये कैसे खत्म हो, कभी 5 करोड़ में आग लगे तो खत्म हो। तो इसको बोल रहे द्रव्य प्रत्याख्यान हो तो भाग प्रत्याख्यान हो, माने वो द्रव्य को तुम छोड़ दो, द्रव्य को दे दो, गवर्नमेंट को दे दो, किसी संस्था को दे दो, मैं कोई बात एक विशेष को नहीं कहता हूं, नहीं तो फिर तुम्हारा दिमाग घूमेगा कि अपनी संस्था को पैसा मांगने लगे तरकीब से, तो गवर्नमेंट को दे दो, मुझे यदि छोड़ना ही है तो फिर क्या विचार करना कि मुझको छोड़ना तो है, क्योंकि मरने में छूट तो जाए नहीं, लेकिन नालायकों को तो दूंगा नहीं, मैंने नहीं समझा था कि बेटे मेरे इतने नालायक हैं, बेटे को किसी को नहीं दूंगा, तो अब तू इसका क्या विचार करता है, गवर्नमेंट में दे दे, अग्नि देवता को समर्पण कर दे, पंडित वो अपना चलेगा क्या, अपने क्या नाम पंडित जी कल होते ना सुबह प्रवचन करते थे कमल जी, वो 400 की घूस उसने उनकी पत्नी ने जला दी थी ना उसने चूल्हे में, बस छूट गए जेल से भी छूट गई, वे नोट नहीं जल पाते तो जेल भी चले जाते, समझ में आ गया हमने कहने कहने का, कि वो द्रव्य प्रत्याख्यान हो जाएगा तो वो भाव प्रत्याख्यान हो जाएगा, माने फिर वो उसके बारे में तुम्हें चिंता नहीं करते कहां इन्वेस्टमेंट करूं। एक बाबा जी थे तो उनके पास कुछ सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई थी, तो अब क्या करें, एक कुटिया में रहते थे उसमें ताला भी कभी लगता नहीं था, तो उन्होंने जो नीचे गुदड़ी थी जिसमें वो सोते थे उसमें वे सारी मोहरें भर ली और गुदड़ी को लगा लगोगे ऐसी बिलकर उस पर करी, अब अपने दिन भर उस पर ही बैठते थे, फिर रात में उसी गुदड़ी पर सो जाते थे, तो सुरक्षा चौकीदारी पक्की होती थी क्या नहीं। उनका एक शिष्य था उसका नाम था पोंगा दास, अरे पोंगम माने सर्वश्रेष्ठ होता है, माने पंडित पोंगम माने सर्वश्रेष्ठ पंडित, पोंगा दास चिल्ला था, तो वे रात भर चिल्लाते थे पोंगा दास जागते रहना बहुत खतरा है, तो न खुद सोते थे, वे तो बुढ़े थे तो कोई बात नहीं, लेकिन जवान पोंगा दास को भी नहीं सोने देते थे, तो उसको बहुत चिंता रहती थी, काय का खतरा है मेरी समझ में नहीं आता, गुरुजी न खुद सोते हैं और न मुझे सोने देते हैं। तो एक दिन जब गुरुजी कहीं लेटरिन बैठने को गए थे तो उसने देखी उनकी गुदड़ी, तो निकली वो निकली तो सब निकाल दी उसने, और वैसी के वैसी फिसल के जमा के रख दी, और उन्हें ले जा करके बहुत दूर एक कुआं था उस कुएं में डाल दिया, और फिर आगे आराम से। फिर गुरु जी ने रात को कहा पोंगा दास सोते रहना बहुत खतरा है, तो गुरु जी आराम से सो कोई खतरा नहीं है, आराम से सो कोई खतरा नहीं है। ये क्यों क्या खतरा है समझ में नहीं आता, कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है क्या वो टटो क्या अब नहीं मर तो वहां फिर गायब थी। पोंगा दास क्या हुआ, खतरा क्यों नहीं है? गुरु जी वो खतरा जो था मैं उन्हें कुएं डालाया हूं बहुत। तो दिव्य प्रतिक्रमण से, दिव्य प्रत्याख्यान से भाव प्रत्याख्यान कैसे हो जाता है समझ में आई ना? अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम क्या समझते थे कि मैं इतने करोड़ इकट्ठे कर लूंगा तो निश्चिंत हो जाऊंगा, क्यों इसके लिए किए थे? और अब वो 24 घंटा उसी का चिंतन चलने लग गया कि कहीं चले ना जाए, अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी दूने हों, और दूने करने के लोभ में ऐसी जगह नहीं फंस जाऊं कि मूल में ही गायब हो जाए, शेयर जो है वो कागज के टुकड़े रह जाए। तो परद्रव्य पर तुम अपना कब्जा समझेगा, कर्ता बनेगा, तो भाव अप्रतिक्रमण खड़ा, भाव अप्रत्याख्यान खड़ा होगा। तो द्रव्य भाव का समझ में ना, देखो पढ़ो वो निमित्त निमित्त संबंध है उसका, इसमें अपन ने कहा है उसमें लिखा था कि वो तुम द्रव्य अप्रतिक्रमण छोड़ देगा, मैंने द्रव्य मैंने वो कर देगा द्रव्य का रखना, तो भाव अप्रतिक्रमण हो जाएगा। कहा था तो पेज निकल गया, नहीं ऊपर ये है, रागादि भावों का अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान। जब तक रागादि भावों का अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान है तब तक वह रागादि भावों का कर्ता ही है। जब वह निमित्त भूत परद्रव्य का, इसका उदाहरण दे रहा हूं मैं, निमित्त भूत परद्रव्य का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है, उसने भी रुपया छोड़ दिया, वो संपत्ति छोड़ दिया, मेरे पास कुछ नहीं, समझे ना, तब उसके नैमित्तिक रागादि भावों का भी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो जाता है। एक क्या समझते तुम्हें जोड़ लूंगा तो मेरी चिंता खत्म हो जाएगी, कि जोड़ने से चिंता नहीं होगी खत्म, त्यागने से चिंता होगी खत्म, समझ में आए ना। और जब रागादि भावों का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो जाता है तब साक्षात करता हो आप कोई काम नहीं रहा, ख्याल में आए ना। तो क्या समस्या थी अपनी, कि द्रव्य दो प्रकार का प्रत्याख्यान है और दो प्रकार का प्रतिक्रमण है, इसलिए ये भगवान आत्मा अकारक है। तो अब उससे दो प्रकार के प्रतिक्रमण, एक ही प्रकार का होता तो फिर वो आपस में उनका कर्ता कर्म नहीं होता, तो मैं कर्ता बनता, तो मैं कर्ता बनता तो मेरे माथे पे कर्तृत्व का भाव आ जाता। अब मुझे अकारक बनना है तो उसका उसके साथ जानो कि वो जाने और वो जाने, हमें कुछ मतलब नहीं है, क्यों हो गया ना। तो जयतनी छावड़ा ने कितने सरल शब्दों में ये बात कह दी, लेकिन इसको भी गहराई से पढ़ के समझ लेना, समस्या का समाधान निकाल लेना बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे दिमाग में समस्या खड़ी कब होती है, सच बोलो। मैं तो लोगों से ये कहता हूं बहुत कि घर में 25 वर्ष की बेटी बैठी है तो नींद कैसे आ सकती है। पत्नी ने पूछा अभी सोए नहीं कि नहीं, क्या क्यों कि घर में 25 वर्ष की बेटी बैठी है तो कैसे नींद आ सकती है, शेयर के भाव घट गए हैं तो कैसे नींद आ सकती है। पत्नी ने बार बार पूछा होगा और आपने कहा होगा, लेकिन एकाध दफे ऐसा हुआ, मैं पूछता हूं कि पत्नी ने पूछा होगा कि अभी तक सोए नहीं, कि नहीं, कि क्यों, कि ये द्रव्य प्रतिक्रमण भाव प्रतिक्रमण से आत्मा अकर्ता कैसे हो जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा। बोलो एकाध दिन ऐसा हुआ, नहीं हुआ तो समझ में नहीं आएगा। बस अभी इससे भी तो नींद हराम होनी चाहिए एकाध दफे। इससे ये सिद्ध होता है कि तू कहां ज्यादा रहता पता है, समझ गया ना। तू सवाल उसका नहीं है, वो तू कहां कितनी गहराई से रहता पता है, समस्या इस बात की है। इसलिए यहां पर एक कह रहे भाई कि द्रव्य प्रतिक्रमण भाव प्रतिक्रमण हो जाएगा, हमारे को ये विकल्प तो होना चाहिए। फिर कहते समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आएगा कैसे समझ में। देखो कोई समझा देगा तो समझ में आएगा, ये मिल जाएगा तो समझ में आएगा, ये सब बातें ठीक हैं। शास्त्र भी निमित्त हैं और गुरु भी निमित्त हैं, पढ़ने से भी आ जाएगा और सुनने से भी आ जाएगा। लेकिन ये किसको आएगा कि जिसकी समझ में नहीं आया इसकी वजह से नींद हराम होगी, तो उसको गुरु के समझाने से भी समझ में आ जाएगा, शास्त्र पढ़ने से भी समझ में आ जाएगा, और गुरु और शास्त्र का निमित्त नहीं मिलेगा तो भी आ जाएगा। क्योंकि मार्ग रुकता नहीं है, क्योंकि एक दफे यदि शास्त्र भी गायब हो गए और गुरु भी गायब हो गए तो क्या हम अनंत काल तक संसार में ही रहेंगे। सब काम परद्रव्य से ही होगा, क्यों हम अनुपम की खोज जब कर पाएंगे, जब अमेरिका बताएगा और सबने नहीं बताया तो वैसा लिटरेचर मिल जाएगा, नहीं अमेरिका वालों ने कैसे की, हम वैसे भी कर लेंगे, है ना। होता है ना कि वो रिसर्च हम अपने तरी बुद्धि से भी कर लेंगे, और इसी दम पर ये विश्व में इतने अनुपम बन गए। कोई ने किसी को बताया थोड़ी है, कोई किसी को बताता थोड़ी है, हैं? धर्म में तो उल्टा है, जिनकी समझ में आ जाता है वे तो बताने के लिए 24 घंटा तैयार रहते हैं, वो खोजते हैं कोई सुनने वाला हो तो बता दें उसे, वहां तो छुपाते हैं। फिर भी वो खोज खत्म नहीं हुई ना, खोज अंदर से जगनी चाहिए, ख्याल में आई ना, खोज अंदर से जगना चाहिए तो वो काम होता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आपको उस बात की आवश्यकता तो महसूस हो। अब इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। आप कहेंगे कि आत्मख्याति की बात अब आप कर रहे हैं और पहले जयचंद जी छाबड़ा को नंबर आपने दे दिया और फिर आत्मख्याति, फिर जयसेन की तात्पर्य वृत्ति और फिर स्वामी जी का हाय राम को धुने को बुने इतना पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई जयचंद जी छाबड़ा के इस भाव को पढ़े बिना आत्मख्याति का भाव खुलता नहीं। अब आत्मख्याति जो पढ़ेंगे तो उसका भाव खुलता हुआ चला जाएगा। इसके लिए जानबूझकर जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ को पहले दिया है, माने ऐसा ही नहीं कि भूल गए, वो क्रम भूल गए कि पहले किसका देना चाहिए, समझ गया ना।